इसका की क्लास प्रारंभ हो रही है। घर बैठे आपको पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के निमित्त से विभिन्न भगवंतों के दर्शन होते हैं। आज 91वां साल जिनका प्रारंभ हो गया है, ऐसी ज्ञानमती माता जी की इच्छा शक्ति देखिए कि वे रोज भावना करती हैं कि जरा सा मौसम ठीक है या स्वास्थ्य अनुकूल है तो हम चलें और टोंकों के दर्शन करके आए। परसों हम अजितनाथ भगवान की टोंक गए, कल अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक के दर्शन किए और आज सरयू नदी के तट पर बसे भगवान अनंतनाथ की टोंक का आपको दर्शन हुआ है। साक्षात आने वाले भक्तों को ऐसा आह्लाद आनंद होता है कि एक तरफ सरयू नदी कल कल करती बह रही है और वो युग के आदिकाल का स्मरण करा रही है कि भगवान ऋषभ देव के समय भी ये सरयू नदी बराबर इस तीर्थ पर बहा करती है, करती थी और आज भी करोड़ों साल के बाद वह नदी यहाँ पर बह रही है और अपने प्राचीन पौराणिक इतिहास को बता रही है। ऐसे इस सरयू नदी के तट पर भगवान की छत्रछाया में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के निकट बैठकर आपको प्रवचन निर्देशिका के अंदर पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व ये प्रकरण सुनाया जा रहा है। आपने कल जाना था कि मुनियों के दिगंबर मुनियों के दो भेद होते हैं, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जिन कल्पी का लक्षण आपने जाना, उत्तम सवनन के द्वारा जो जिनेंद्र भगवान के समान उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हैं और अपने शरीर से पूर्ण निर्मम होकर के 6-6 महीने तक भी निराहार रह सकते हैं, ऐसे जिन कल्पी परम निष्प्रही मुनिराज होते हैं, जिनेंद्र भगवान के समान उनकी चर्या होती है। दूसरा भेद है स्थविर कल्पी। स्थविर कल्पी का मतलब यह है, जिनेंद्र देव ने अनगारों के लिए स्थविर कल्प भी बताया है, सो ये ऐसा है कि 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग करना, अकिंचन वृत्ति धारण करना और प्रतिलेखन अर्थात पिच्छिका ग्रहण करना, यानी दिगंबर। दिगंबर माने दिशाएं ही हैं अंबर जिनकी, वस्त्र जिनके, तो वे बाहर से शरीर के विकारों को ढकने के लिए जो वस्त्र होते हैं उनको 5 प्रकार के कहा, यानी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, बलकल के वस्त्र छाल वगैरह के जो पहन लेते हैं और चर्म के वस्त्र, चमड़े के भी वस्त्र। ऐसे 5ों प्रकार के वस्त्रों को पहनने का जिनके त्याग होता है, जो उनका त्याग कर देते हैं और अकिंचन वृत्ति को धारण कर लेते हैं, शरीर से पूर्ण रूप से निष्प्रय हो जाते हैं और निर्विकार बालक के समान जिनकी चर्या होती है, ऐसे दिगंबर मुनिराज स्थविर कल्प को धारण करने वाले संघ के समूह के साथ रहते हैं। 5 महाव्रतों को धारण करना, एक बार भोजन करना खड़े होकर के, भक्ति सहित श्रावक के द्वारा दिया गया आहार कर पात्र में ग्रहण करते हैं। हर दिगंबर समाज का बच्चा बच्चा इस चर्या से परिचित है। आज भी सैकड़ों नगरों को संतों के चातुर्मास का जो सौभाग्य मिला, तो हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे भी उनसे पूछो, हम आपके महाराज जी आहार कैसे लेते हैं, बराबर अंजलि के लेकर बताते हैं कि इस प्रकार से आहार लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी आहार दिखाया जाता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे संतों को नमन करना जो याचना करके भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करते, बड़ी अच्छी नवधा भक्ति के साथ, जिन्हें 7 गुणों से युक्त होकर दातार प्रदान करते हैं, उसको एकदम निरीह वृत्ति से लेते हैं और जरा सा अंतराय भी आ जाने पर बाल आ गया, चींटी आ गई, तुरंत छोड़ देते हैं और फिर 24 घंटे तक ना जल, ना अन्न, ना औषधि, कुछ भी नहीं। ये सब आप रोज ही संतों के आहार को देखकर उनकी चर्या से परिचित होते हैं। इसके साथ वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। सवनन की अपेक्षा दुष्मा काल में पुर नगर और ग्राम में निवास करते हैं, यानी कि ज्यादा आतापन आदि योगों को पंचम काल में नहीं ग्रहण किया जाता, क्योंकि शरीर आजकल कमजोर होते हैं। तो इस प्रकार से भव्यों को धर्मोपदेश भी सुनाते हैं, संघ के साथ विहार करते हैं, एकाकी विचरण यानी एकल विहारी नहीं होते हैं, अकेले विहार नहीं करने का विधान है, नियम है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है। और अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार शिष्यों का संग्रह करके मोक्ष मार्ग में उन्हें लगाते हैं। तो पूर्व काल में भी, चतुर्थ काल में भी तपस्या करते थे, और पंचम काल में भी आज भी तपस्या करते हैं। उन साधुओं को कहते हैं स्थविर कल्पी। और हम लोगों के लिए इतना कहा गया, संतों के लिए, कि चतुर्थ काल में जिन कर्मों को उत्तम संगणन के द्वारा साधु जन 1,000 साल में नष्ट करते थे, उन कर्मों को आप इस पंचम काल में 1 साल की तपस्या से नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कि हीन संगणन के द्वारा जब शरीर बिल्कुल अन्न का कीड़ा बना हुआ है, लोगों को भक्ष भक्ष का ज्ञान नहीं है, रात दिन खाते पीते हैं, ऐसे युग के अंदर भी एक बार भोजन करने वाले, परिसरों को सहन करने वाले, मूल गुणों का पालन करने वाले संत जन बिल्कुल मुट्ठी भर, जो उंगली पर गिनती करने वाले हैं, ऐसे संत आज भी विचरण कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका बड़ा भारी सौभाग्य है, हमारे बीच में आज ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जो वर्तमान के सारे संतों में सबसे प्राचीन संत हैं। ये बतलाती हैं कि सन 1952 में जब हमने घर छोड़ा, दीक्षा के मार्ग को स्वीकार किया, उस समय केवल 70-72 साधु थे, और आज 72 साल इनकी दीक्षा को हुए। आज कम से कम ये हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारी समाज में कम से कम 1600 से 1700 साधु मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका के रूप में विचरण कर रहे हैं। ये धर्म की वृद्धि है, और पंचम काल के अंत तक युवा भी, मध्यम उम्र के भी, वृद्ध भी, सब लोग संयम को धारण करके और मोक्ष मार्ग को साकार करेंगे। आज मैं यहाँ कह रही हूँ कि हमारे बीच में चूड़ीवाल परिवार आया हुआ है कलकत्ता गुवाहाटी से, और ये चाहते हैं कि हम ज्ञानमती माता जी के हाथ में पिच्छिका दे दें। अभी मार्ग में बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हमारी पत्नी की बड़ी इच्छा थी कि आरिका सुपार्श्वती माता जी के पीहर के परिवार के हैं, बड़ी इच्छा थी कि हम युग की सबसे बड़ी साध्वी ज्ञानमती माता के कर कमलों में अपने हाथ से पिचिका दे दें, और इनकी पुरानी पिचिका हमारे घर के अंदर आ जाए। ये भी समझो आपके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। तभी स्वामी जी ने अन्य लोगों की इच्छाओं को दरकिनार किया और बोले कि हम तो चूड़ीवाल परिवार को ये लाभ जरूर प्रदान करेंगे। तो भव्यात्माओं, जिस पिच्छिका को लेकर इन्होंने भगवान ऋषभ देव के करोड़ों करोड़ों अरबों मंत्र पढ़े हैं, जिस पिच्छिका को हाथ में लेकर के, ज्ञानमती माता की पिच्छिका छोटी रहती है, सबसे बड़ी माता जी की सबसे छोटी पिच्छी रहती है, लेकिन उस पिच्छिका के अंदर इतना बृहत गुण छिपा हुआ है कि जिस घर के अंदर चली जाती है, उस घर के अंदर लोग क्या महसूस करते हैं, ये आपको पिच्छिका विराजमान करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इस पिच्छिका को हरदम वो लेकर प्रतिक्रमण करती हैं, सामायिक करती हैं, अपने 28 प्रतिकर्म करती हैं, और मैं देखती हूँ कि इस उम्र में ज्ञानमती माता की हर सामायिक डबल होती है, दो दो बार सामायिक करती हैं, पूरे दिन माला फेरती हैं, और इस पिच्छिका को समक्ष रख करके अपने गुरुदेव का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि इस पिच्छिका से हमने आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में नमन किया था। ये पिच्छिका हमें आचार्य वीर सागर महाराज के कर कमलों से प्राप्त हुई थी। तो भव्यात्माओं, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका ने छुल्लक छुलिका और ऐलक, ये पांच पिच्छीधारी होते हैं। अभी हमने आपको बताया पिच्छी रे पिच्छी नग्न दिगंबर संतों की ये निशानी, इसे धारते मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका ज्ञानी। मुनि आरिका छुल्लक ऐलक और छुल्लिका यही इसको धारण करते हैं। बाकी प्रतिमाधारी लोगों को, सात प्रतिमाधारी वगैरह को ये पिच्छिका नहीं मिलती। ऐसी पिच्छिका धारण करने वाले संत आज हमारे बीच में है। बीच में कुछ कुछ परंपराएं थोड़ा बहुत चल गई पिच्छिका के बारे में, विवाद भी आ गए। छुल्लक लोगों को, छुल्लिकाओं को पिच्छिका देने से मना किया जाने लगा। ये सब आगम के विपरीत है, क्योंकि पिच्छिका लेकर के हमारे संतजन जो हमें गुरु लोग प्रदान करते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज ने भी छुल्लक दीक्षा ली, वीर सागर महाराज ने भी छुल्लक दीक्षा ली। सब परंपरा से, पहले ब्रह्मचारी से छुल्लक ऐलक और मुनि दीक्षाओं को धारण करके और अपनी तपस्या को वृद्धिंगत करते हैं। इसलिए इस अधिकार के अंदर, इस अध्याय के अंदर जिन कल्पी और स्थविर कल्पी मुनियों की बात कही, और आप देखिए पेज नंबर 144 पर और भी अधिक सुंदर बात बताई है कि उत्तम समनधारी मुनियों का इस समय अभाव है। इसलिए आज से 2000 साल पहले हुए आचार्य से कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे, वे भी जिन कल्पी नहीं थे। इसलिए कि उनके ही उत्तम संगणन नहीं था, ना ये 11 अंगों के ज्ञाता थे, ना ये 6 6 मास तक काल सर्ग में लीन रहते थे, और ना ये हमेशा पर्वत पर गुफाओं में ध्यान करते थे। क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्रंथों का लेखन नहीं बन सकता। महान आध्यात्मिक संत होते हुए भी कुंद कुंद आचार्य ने इतने ग्रंथों को लिखा। ग्रंथ लिखने के लिए भी ताड़ पत्र चाहिए होता था, जिससे भी लिखते थे वो कलम हो रहती होगी, तभी तो वो ग्रंथ लिखते थे। और जब ग्रंथ लिखते हैं तब उस समय आत्मा का ध्यान नहीं होता है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य पर श्रद्धा करना, जैसे उन्होंने पंचम काल में चारित्र का परिपालन किया है, ऐसे ही आज भी संत जन चारित्र का परिपालन करते हुए स्थविर कल्पी साधु की श्रेणी में आते हैं। आगे मूलाचार के अनुसार पद विभागी समाचारी का निरूपण करते हुए आचार्य देव ने कहा कि कोई धैर्य वीर्य उत्साह आदि गुण गुण से सहित मुनि अपने गुरु के पास उपलब्ध शास्त्रों को पढ़कर पुनः विशेष अध्ययन के लिए अन्य आचार्य के पास जाना चाहता है, तो अपने गुरु के पास विनय से बार बार जाकर प्रार्थना करें, निवेदन करें, और उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर के एक दो या तीन मुनियों के साथ विहार करके जाएं, एकाकी विचरण ना करें। आप एकाकी विचरण करने वालों के बहुत सारे दुष्परिणाम देखते ही होंगे कि किस प्रकार से चारित्र की हानि होती है, बाहर में निंदा के पात्र बनना पड़ता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मां मैं सत्तु भी एकागी, मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण ना करे। और समूह में ही रह करके अपने मूल गुणों का पालन करना चाहिए। आगे 145 नंबर के पेज पर एकल विहारी साधु के लिए जो गुण बताए हैं, वो चतुर्थ काल के महामुनिराजों के अंदर ही ये गुण घटित होंगे। इसको आप पढ़िए। कहते हैं कि गमनागमन में, सोने में, उठने में, कुछ वस्तु ग्रहण करने में, आहार लेने में, मलमूत्र आदि विसर्जन करने में, बोलने में, जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाला ऐसा कोई भी मुनि चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, एकाकी विचरण ना करे, ऐसा मूलाचार का आदेश कहा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। उन्होंने कहा, स्वच्छंद गदा गदी शयन नियणाधान भिक्ख वो शरणे स्वच्छंद जम परोचिय माँ में सत्तु भी एकागी। तो ऐसा स्वच्छंद कोई भी एकाकी विचरण ना करे। आप इस प्रकरण का खूब अच्छा स्वाध्याय करिए और उसके बाद संतवाद पंतवाद से ऊपर उठ जाइए। जिस किसी संत के हाथ में पिच्छी और कमंडल देखें उन्हें नमन करें। कोई ग्रुपबाजी ना होने दें। हम इस साधु के शिष्य हैं, हम उस साधु के विरोधी हैं। ये करने में आपको महान कर्म का बंध होगा। इसलिए भव्यात्माओं, स्वाध्याय का एक ही फल है कि हम स्वाध्याय की पंक्तियों को जीवन में साकार करें और हर संत के प्रति अपने श्रद्धा भाव को समर्पित करें। ये आज के स्वाध्याय का सार समझना और सबको ध्यान देना है। 30 नवंबर को आपकी परीक्षा होनी है, 2 अध्याय की। एक आपने चारों अनियोगों की सार्थकता पढ़ा और एक है पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। पेज नंबर 124 से लेकर पेज नंबर 169 तक पढ़ करके आपको परीक्षा देना है। यूट्यूब चैनल में भी आपको भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो प्रवचन मिलेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म .com में ऑडियो प्रवचन मिलेंगे। उनके द्वारा भी कोई विषय आपका छूट गया है सुनिए और साक्षात ग्रंथ रख करके स्वाध्याय करिए। और परीक्षा के लिए 30 नवंबर को दिन में 3:30 बजे जूम चैनल पर, जैसे हमेशा आप परीक्षा देते आए हैं, परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। खूब ज्ञान की वृद्धि हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।